आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। पंकज जी नमस्कार।
नमस्ते अनिता जी।
पंकज जी, बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई तक का लंबा सफर, एक सीधे साधे व्यक्ति से गैंग्स ऑफ वासीपुर के सुल्तान, फिल्मों का ये आकर्षण कहाँ से आया?
इनफैक्ट कहीं से नहीं आया, अभी भी नहीं है मुझे फिल्मों के प्रति आकर्षण। मुंबई चूंकि मैं थिएटर करता था
जी,
तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लगा हिंदी थिएटर में पैसे नहीं है तो मुंबई चलता हूँ। तो मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए आया था, ना कि किसी अट्रैक्शन के लिए आया था।
और बन बैठे आप सुल्तान।
शादी शुदा है तो घर चलाना होता है, तो घर चलाने आया था मैं, आकर्षण में नहीं आया था
जी। अब घर भी चल पड़ा है तो क्या कोई संघर्ष रहा?
काफी रहा। मतलब 2004 से आया हूँ मैं
जी,
2015 के बाद लोग मुझे जानने लगे, तो वो 8-10 साल तो मैं भटकते रहा।
और पहचान बनी गैंग्स ऑफ वासीपुर से?
बिल्कुल।
मैंने कहीं सुना है कि आप निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे सुल्तान के लिए।
जी, सही है। मुझे मुकेश ने बताया था, जो मुकेश छाबड़ा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे
जी,
तो उन्होंने बताया था कि अनुराग नहीं थे। फिर अनुराग ऑर्गेनिक है, अनुराग ने अपनी टीम को पूछा
जी
कि मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो शायद उनके मुकेश ने और बाकी टीम मेंबर ने बोला नहीं सर ये सही है, ये करेक्ट लड़का है। बहुत लाइफ का सबसे लंबा ऑडिशन दिया है गैंग्स ऑफ वासीपुर में। मैं दिन में 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 7 घंटे ऑडिशन किया था।
इतना लंबा ऑडिशन होता है क्या?
अमूमन होता नहीं है, अमूमन ऑडिशन आधे घंटे 40 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर थे
जी,
सारे सीन करवाए मुझसे सुल्तान के, जितने सीन फिल्म में उस समय लिखे जा चुके थे एक एक करके मैंने सारे सीन्स किए। उसके बाद फिर अनुराग ने बोला इसको लेंस लगाओ, तो फिर मैं बाजार से एक लेंस मंगाया गया, हरे रंग का लेंस और ग्रीन लेंस लगा के अगेन मैंने 2-3 सीन किया। मुझे को एक्टर मिले थे 2-3 मेरे साथ करने के लिए, तो बहुत प्रॉपर में बहुत लंबा ऑडिशन था, इतना बड़ा ऑडिशन मैंने कभी नहीं किया है।
और फिर जब सफलता हाथ लगी तो लगा होगा कि संघर्ष करने की जो एक सीमा होती है उसमें सफलता मिली है।
बिल्कुल। आपको अगर अपना क्राफ्ट आता है ना
जी,
आप जानते हो
जी,
और ईमानदारी है आप में और थोड़ा धीरज चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में समय लगता है, तो बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, तो आप क्राफ्ट जानते हैं, अपनी कला को जानते हैं और थोड़ा ईमानदारी से लगे हैं तो हो जाती हैं चीजें, जैसे मेरे साथ हो गई
जी। आपने कहा कि आप क्राफ्ट जानते हैं, यानी आपके पास ट्रेनिंग थी, और चूंकि आप थिएटर के पृष्ठभूमि से आए, NSD से आए, तो क्या जो ट्रेन्ड एक्टर होता है और जो जिसको क्राफ्ट ना पता हो उसके लिए क्या स्ट्रगल कुछ अलग होता है?
नहीं मैम, हमारी इंडस्ट्री जो है ना
जी,
ये कैसे वर्क करती है कोई नहीं जानता है ठीक से। आजकल क्या है कि बच्चे आते हैं नए नए बच्चे, जिम में जाके वो बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं, 6-pack 8-pack बना लेते हैं, एब्स बना लेते हैं
जी,
बट विचार नहीं बना पाते हैं। जिम में बॉडी बनती है, विचार नहीं बनता है। तो टीवी शोज में या बहुत सारे फिल्मों में भी वो हीरो बन के आ जाते हैं क्योंकि सुंदर दिखने में है, उन्होंने बॉडी अच्छी बना ली है
जी,
और अच्छा डायरेक्टर अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई तो हिट भी हो जाती है फिल्में। तो वो दो क्लास का स्ट्रगल है। हमारे जैसे लोग जो आउटसाइडर जो गांव खेड़े से आते हैं, मैं तो गांव का हूँ, शहर का भी नहीं हूँ, कस्बा का भी नहीं हूँ, मेरा नीरा गांव है मेरा घर
जी।
तो हमारे लिए लड़ाई अलग हो जाती है कि ना हमारे पास वो बॉडी बिल्डिंग होती है, ना ही हम बेहद खूबसूरत होते हैं, ना हमारे पास आकर्षक कपड़े होते हैं, तो स्ट्रगल में हम बहुत दयनीय अवस्था में, दीनहीन अवस्था में घूमते रहते हैं, लेकिन हमारे पास विचार होते हैं, एक चीज है विचार
जी।
तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड है तो आपको सहूलियत मिलती है और ट्रेंड आप क्राफ्ट नहीं जानते हो, क्योंकि क्राफ्ट का लेना देना सेकेंडरी है यहाँ पे। आपको जब एक रोल मिलेगा उसके बाद आप बता पाएंगे कि यू नो योर क्राफ्ट, आपको क्राफ्ट पता है या नहीं है। एक रोल मिलना अपने आप में बहुत चमत्कारिक और कठिन काम है यहाँ पे
जी। आप गांव से आए हैं और अब जब ये सुल्तान गांव वापस जाता है तो वहाँ क्या प्रतिक्रिया होती है और गांव की क्या क्या यादें हैं आपके पास में?
बहुत यादें हैं। मतलब मैं अभी भी मेरा मन वहीं पे रहता है।
जैसे
मैं जाता हूँ हर 3rd महीने, मेरे माँ बाबूजी गांव में हैं अभी भी।
हाँ, जी।
तो मैं हर तीसरे चौथे महीने जाता हूँ और बहुत सारी यादें हैं। तो दसवीं तक तो मैंने रेलवे की जो ट्रेन होती है ना, वो स्लीपर कोच नहीं देखा
जी,
था।
अच्छा।
हाँ, मैंने टेंथ तक वो भी, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी मीटर गेज थी, तो मीटर अभी जाके एक महीना पहले बड़ी लाइन बनी है मेरे गांव में, गांव से 7 किलोमीटर दूर। तो स्लीपर कोच नहीं आती थी, वो छोटी 3 बोगी की ट्रेनें चलती थी। तो मैंने तो दसवीं तक सिनेमा हॉल अंदर से नहीं देखा था, थिएटर कैसा होता है। तो बहुत यादें हैं हमारे गांव में। हमारे खिलौने जो होते थे, रात को जुगनुओं पकड़ते थे हम, दिन में तितलियों के पीछे भागते थे। ग्रीनरी है घर के आगे पीछे, खेत है, नदी है
जी,
और पोल्यूशन नाम की चीज नहीं है, जीरो पोल्यूशन है वहाँ पे। कोई
क्या
कोई इंडस्ट्री
बात
नहीं है, कोई घर में एसी नहीं है,
है।
कोई गार्बेज नहीं है, हमारे यहाँ कचरा निकलता ही नहीं है, क्योंकि अभी भी है ऑर्गेनिक माहौल में जीते हैं लोग गांव में।
क्या बात है। तो अब तो आपने एक मुकाम पा लिया है जहाँ पर हर कलाकार, जो ईमानदार कलाकार है, वो वहाँ पहुँचना चाहता है। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपको सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगेगी अपने आप के लिए?
मुझे देखता हूँ मुड़ के अपनी पूरी जर्नी को ना, तो मुझे एक स्वप्न कथा जैसे लगता है। मुझे यकीन नहीं होता कि आज ये कैसे हुआ। मतलब कल कोई पूछ रहा था मुझसे कि आप कैसे आए बॉलीवुड में, सिनेमा में, आपने माँ बाप को पहली बार बताया कि मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ तो क्या हुआ था
जी।
मैंने बोला यार ये सब कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। जैसे ग्लेशियर से पानी पिघलता है या पहाड़ों पर बारिश होती है, तो वो पानी अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते नीचे जमीन पे उतर के नदी का शक्ल ले लेती है। तो मैं तो वैसे पहाड़ी सोते की तरह, पहाड़ी पानी की तरह नीचे उतरा और वो नदी की तरह मेरी यात्रा शुरू हुई, और मुझे पता नहीं चला कि मैं समंदर में मिलने वाला हूँ, बॉलीवुड में घुस गया। तो मेरे को यात्रा बड़ी वो ड्रीमी ड्रीमी से लगती है, वो स्वप्न कथा जैसे कि यार मैं जिस परिवार से आता हूँ, मैं मेरे बाबूजी पंडित हैं, पूजा पाठ कराते हैं
जी,
तो मैं भी 2-4 पूजा पाठ में गया हूँ, और खेती है, किसान लोग हैं। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सिनेमा में जाऊंगा, मैं एक्टिंग करूंगा। ये कैसे हो गया, वो जर्नी अपने आप मुझे लेके चली आई। मैंने बहुत बड़ा योगदान मेरा नहीं है इसमें। तो आगे भी 10 साल बाद भी मैं शायद इसी स्थिति में रहूंगा कि यार मैं समझ नहीं पा रहा होऊंगा कि यार ये कैसे हुआ।
लेकिन
हाँ, अब थोड़ा अवेयर हो गया हूँ, अब अच्छी फिल्में करने लगा हूँ कि नहीं यार लोगों का भरोसा बना है
जी,
और फिल्में ठीक करनी है, अच्छी करनी है।
आपको अपने व्यक्तित्व के हिसाब से किस तरह की फिल्में बहुत पसंद हैं, किस तरह का रोल आप करना चाहते हैं? अभी तक तो आपने हर तरह का रोल कर लिया जी।
हाँ, मुझे सिंपल सादा जो किरदार है ना, अभी बरेली की बर्फी आएगी अब 18 तारीख को,
और आप उसमें पिता बने हैं
जी। पिता बना हुआ हूँ, नरोत्तम मिश्रा मेरा नाम है, मिठाई दुकान चलाते हैं, मिठाई
जी,
की दुकान है
जी,
और उतने ही मीठे व्यक्ति हैं
जी,
बेटी से बहुत प्यार है इनको। तो मैं नरोत्तम मिश्रा जैसे रोल, अनिल भट्ट सन्नाटा, एक फिल्म में मैंने मास्टर का रोल किया था, प्रिंसिपल का
जी।
तो सिंपल सादगी भरे रोल जो होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जिनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। जैसे ही रामम एक किरदार था, तीसरी कसम एक फिल्म थी, राज कपूर साहब ने किया था वो रोल, वही रहमान। तो मुझे वो कहानी भी बेहद पसंद है, वो लेखक जो है फणीश्वरनाथ रेणु, मुझे बेहद पसंद है वो। तो मैं हीरामन जैसे रोल करना चाहता हूँ जो कॉम्प्लेक्स विहीन हो।
एक आदर्श रोल की बात की तो आपके आदर्श कलाकार कौन से हैं? क्या मैं राज कपूर को ही आपका एक आदर्श कलाकार मान लूं?
जी जी बिल्कुल, बेशक मान सकते हैं राज कपूर साहब के। इन दिनों में अपने स्वर्गीय ओम पुरी जी से मैं उनको बड़ा मानता हूँ। ये सब लोग हैं, इनको देखते हैं कभी कभी इंस्पायर्ड होते हैं। मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ता था, मैं ओम जी का, नसीर साहब का, पंकज कपूर के, इनके पुराने प्लेज हम निकाल के कुछ वीडियो फॉर्मेट में है तो देखता था, इनकी इनकी जर्नी पढ़ता था।
पंकज जी,
तो अभी मुझे डर लगता है, मैं तो अभी भी मतलब ओम जी या नसीर साहब दिख जाते हैं तो मैं इतना भद्र बालक बन जाता हूँ, कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, चुपचाप बैठा रहता हूँ, सुनता हूँ इन लोगों को। किसी भी लीजेंड व्यक्ति को मिलता हूँ तो मैं बोलता नहीं हूँ, सुनता हूँ उसको। अभी रजनी सर के साथ फिल्म कर रहा हूँ, रजनीकांत के साथ, तो मैं उनसे सुनता हूँ, उनको कुरेद दूंगा, मैं एक सवाल छोटा सा पूछ लूंगा कि आप हिमालय की यात्राओं पे जाते हैं, बताइए कुछ। और वो बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ यार क्या अनुभव है इन लोगों के पास। यार लीजेंड लोग हैं, नाना साहब के साथ अभी थे हम, नाना पाटेकर के साथ। मैं तो विद्यार्थी हूँ, अभी विद्यार्थी हूँ और चाहता हूँ जीवन भर विद्यार्थी रहूँ, मैं सुनूँ लोगों को, सीखूँ लोगों से।
क्या बात है,
ये थोड़ा आइडियलिस्टिक लगता होगा बट ये सच है।
ये आप कह रहे हैं इसीलिए ये सच भी है, क्योंकि आप जितनी आसानी से, जितनी ईमानदारी से ये जो बात आप कर रहे हैं वो आपकी बात में झलक रही है, उसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है। पंकज जी, आपके साथ बात करना अपने आप में एक अनुभव है मेरे लिए, और ये अनुभव मैं भी कभी नहीं भूलूंगी।
जी अनिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने दूर से दूसरे मुल्क में बैठ के मुझे याद किया, तो मैं आभारी हूँ कि आपको लगा कि मुझसे बातचीत होनी चाहिए। और समय बस समय जब नई फिल्में आएंगी या ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर बातें करेंगे, और जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा सप्रेम नमस्कार। जी, फिल्में आने वाली है, देखते रहिए, हम मनोरंजन करेंगे। और मैं चाहता हूँ लोगों को इंटरटेन करना और हेल्थी इंटरटेन करना, फास्ट फूड नहीं देना, चाहता हूँ खाते वक्त भी अच्छा लगे और असर भी अच्छा हो।
बिल्कुल, क्या बात है,
इंटरटेनमेंट हम दें।
जी बिल्कुल, हमें आपकी उन सभी फिल्मों की प्रतीक्षा रहेगी। अभी तो आपकी बरेली की बर्फी और गुड़गांव तो आ ही रही है। अभी जो थोड़ा सा समय आपने मेरे लिए निकाल लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।
शुक्रिया नीता जी, शुक्रिया, मुझे बेहद अच्छा लगा।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।